दूसरा सैमुअल अध्याय 19। दाऊद अपने बेटे अबशलोम के लिए अपने कमरे में रो रहा था और शोक कर रहा था। अध्याय 19 पद 1 से लेकर 8 तक। तब योआब को यह समाचार मिला कि दाऊद अबशलोम की मौत के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है, इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों के समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। और उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसे लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं, और राजा मुंह ढापे हुए चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा कि हाय मेरे बेटे अबशलोम, हाय अबशलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरे पत्नियों और रखेलियों का प्राण तो बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है। इसलिए तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज ये प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशलोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूं कि यदि तू बाहर ना जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग ना रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियां तुझ पर पड़ी है उन सब से ये विपत्ति बड़ी होगी। ये एक अच्छा परामर्श था जो योआब ने उसे दिया। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा, और जब सब लोगों को ये बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए और इसराइली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। अब इसके बाद राजा को वापस यरूशलेम लाने का काम शुरू होता है। दरअसल वे दाऊद से अलग हो चुके थे, इसराइल यरूशलेम वगैरह दाऊद से अलग हो चुके थे, और अब उन्होंने दाऊद को वापस लाने का प्रयास शुरू किया। यरूशलेम वापस आते समय जब दाऊद यर्दन नदी के पास पहुंचा तो सबसे पहले शिमी आकर उसे मिला। वो शिमी जो पहले उसके जाते समय उस पर पत्थर फेंक रहा था और उसे कोस रहा था, परंतु जब दाऊद वापस आ रहा था तो शिमी उसे मिलकर उसको बधाई देने और स्वागत करने आया। अध्याय 19 पद 18 से लेकर 23 तक। और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वो उसे लगाना चाहे उसी में लगाने के लिए पार गया। और जब राजा यर्दन पार जाने पर था तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांव पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरा दोष का लेखा ना करे, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे ऐसा स्मरण ना कर कि राजा उसे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूं। तब सुरैया का पुत्र अभिषे जो पहले शिमी का सिर काट देना चाहता था ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषेक को शाप दिया था इस कारण क्या उसको वध करना ना चाहिए? दाऊद ने कहा, हे सरूया के बेटों, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो? आज क्या इसराइल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इसराइल का राजा हुआ हूं? फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड ना मिलेगा, और राजा ने उसे शपथ भी खाई। इसके बाद योनातान का बेटा मेफीबोशेत उससे मिलने आया था। मेफीबोशेत के सेवकों ने दाऊद से ये झूठ कहा था कि मेफीबोशेत ने अबाशी से राज्य निष्ठा की प्रतिज्ञा की है, या मेफीबोशेत दाऊद के भाग जाने के बाद स्वयं राज्य का अधिकार लेने की कोशिश कर रहा था। 19 अध्याय पद 24 से लेकर 27 तक। तब शौल का पोता मेफीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक ना अपने पांव के नाखून काटे और ना अपनी दाढ़ी बनवाई और ना अपने कपड़े धुलवाए थे। तो जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गए, तब दाऊद ने उससे पूछा, हे मेफीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था। तेरा दास जो पंगु है, इसलिए तेरे दास ने सोचा कि मैं गधे पर काठी कसवाकर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा, और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है। इन्होंने झूठ कहा है। सच तो ये है कि इन्होंने मुझे गदा लाकर नहीं दिया कि मैं एक विकलांग व्यक्ति तेरे पास आने में सामर्थ होता। अतः ये जानने के बाद मेफीबोशेत के बारे में जो कुछ उसे कहा गया था वो सब झूठ था, दाऊद ने उसे माफ कर दिया। अतः वे दाऊद राजा को वापस लाए और वो बूढ़ा आदमी जो उसे रास्ते में मिला था उसे खाना पीना दिया था। उसे दाऊद अपने साथ यरूशलेम ले जाना चाहता था। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो 80 साल का बूढ़ा हूं, मैं यही खुश हूं, मैं उन नाचने वाली लड़कियों का आनंद उठाने के लिए बहुत बूढ़ा हूं, मैं यरूशलेम क्यों जाऊं, मैं जहां हूं यही मरूंगा। अतः दाऊद ने उसकी सारी भलाई के लिए उसे धन्यवाद दिया और जाने दिया। अब वहां इसराइल के उत्तरी गोत्रों और यहूदा के दक्षिणी गोत्रों में एक तरह से धीरे धीरे विभाजन हो रहा था। ये विभाजन दाऊद के सत्ता में आने के शुरुआती दिनों में ही स्पष्ट हो गया था। इसराइल पर राज्य करने के पहले दाऊद ने 7 साल तक यहूदा पर राज्य किया था। अब राज्यों के विभाजन की ये पुरानी दुश्मनी फिर से सिर उठाने लगी थी। बाद में दाऊद का पोता रहुबियाम जब यहूदा का राजा बना और यरोबाम इसराइल का राजा बना, तब यहूदा और इसराइल का पूर्ण रीति से विभाजन हो गया था। तब वहां दो राष्ट्र बन गए। केवल कुछ लड़ाइयों में साथ जाने के अतिरिक्त वे फिर कभी ना मिले। बहुत दिलचस्प है कि एहेस्केल की भविष्यवाणी में परमेश्वर ने राष्ट्र की पुनर्स्थापना का वायदा करते हुए कहा था कि जब वे लौट आएंगे तब वे एक राष्ट्र होंगे, दो नहीं। जी हां, 1948 इसराइल राष्ट्र की पुनर्स्थापना के बाद उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य नाम की चीज नहीं थी। संपूर्ण राष्ट्र में एकता है। बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो गई है। जैसे कि एहेस्केल ने बरसों पहले भविष्यवाणी की थी, ठीक वैसे ही वे एक राष्ट्र, एक रूप हो गए और उनके ऊपर एक ही शासक भी हो गया।